ओम शांति। बोलना पड़ेगा सबको ओम शांति। पीछे वालों ने बोला ओम शांति। सुबह से चलते रहे हैं फिर चलते रहते हो तो गाते भी रहते हो या सिर्फ चलते रहते हो अगर चलते रहो और गाते भी रहो तो गाते रहना किसी की निशानी है? गाते रहना खुशी की निशानी है। ये तो बात ठीक है। तो जब हम चलते रहते हैं क्योंकि मधुबन में तो आप लोगों को फ्री समय नहीं मिलता है ना बैठने का, चलते रहो, दिनचर्या के अंदर बंधे हुए रहो, परंतु बंधे हुए होते भी हमें अंदर ही अंदर बाबा के गुण गाते ही रहना है। अगर हम बाबा के गुण गाते रहते हैं तो खुशी हमारी इमर्ज रहती है। इमर्ज रहती अर्थात खुशी में क्या क्या होता है? जब किसको बहुत खुशी होती है तो उसके क्या चिन्ह होते हैं, क्या निशानी होती है? चेहरा खिला हुआ होता है। और क्या होता है? चलने में वो नाचता हुआ नजर आएगा। और क्या होता है? दूर वालों का आवाज नहीं सुनाई पड़ता है, वो हर कार्य चुस्ती से करता रहेगा। प्यार में पागल हो जाता है उसमें सुस्ती नहीं आ सकती। जो खुशी में होता है ना बहुत, तो वो उसमें सुस्ती नहीं आएगी। और वो जैसे बोला ना चलते रहेगा तो ऐसे लगेगा जैसे नाचता है, हर काम बड़ा चुस्ती से करेगा और जल्दी जल्दी पूरा करता जाएगा। क्योंकि खुशी किस बात की है उसके अंदर, वो उसके अंदर में बात चलती है। बाहर से भले न भी बोले परंतु वो खुशी उसके जो अंदर में होती है उसी कारण वो बड़ा चुस्ती में रहता है, जल्दी जल्दी काम पूरा करके जो उसके अंदर की बातें हैं ना फिर उसमें मग्न हो जाता है। तो बाबा ने हम बच्चों को खुशी का खजाना दिया है ना, खुशी का खजाना मिला हुआ है या अभी लेना है? मिला हुआ है, चेहरे से तो नहीं लगता है कि खजाना मिला है। जब खजाना मिल जाता है, कोई भी वस्तु का खजाना माना बहुत मिल जाता है, तो कैसे उसकी भरपूरता उसके चेहरे से नजर आती है। क्योंकि खजाना मिलना माना भरपूर हो जाना, और भरपूर हुआ तो जरूर है उसको खुशी होंगी ही। तो इसलिए जब बाबा ने हम बच्चों को सब बातों से भरपूर किया है या अभी कुछ रह गया है? कौन सी बातों से भरपूर किया है? ज्ञान से। और देखें क्या क्या वर्णन करते हो? गुणों से। और वर्णन करने की कोशिश करो तो उसके बाद जो सुनेंगे ना वो हजम होगा। शक्तियों से, गुणों से, ज्ञान से, और क्या क्या भरपूर किया है? शांति से। और वरदानों से, ये भी ठीक है। और दुनिया से किनारा कराया। अच्छा, किनारा करा के क्या दिया? क्यों हमने किनारा किया दुनिया से? हल्कापन होता है। हाँ ठीक है, ये बात भी ठीक है। और क्या दिया खजाने? और क्या क्या मिले? मीठी नींद से छुड़ाया, मीठी है पर छुड़ा दिया। तो जो चीज मीठी लगती है और अगर कोई छुड़ा देता है तो उसको छोड़ते नहीं है। ऐसे कहें तो नींद बड़ी मीठी लगती है, प्यारी लगती है, और बाबा ने उसे छुड़ा दिया है, परंतु परंतु छूटती नहीं है। हम छोड़ने चाहते हैं पर छूटती नहीं है। अच्छा, मधुबन में आए हैं, बाप के घर में पहुंचे हैं, ठीक है। तो बाबा तो सदा ही बच्चों का स्वागत करता ही है। बाबा के घर में आते हो तो स्वागत होती है ना। हाँ, दादी कितना मिलती है, एक एक से, एक एक का नाम, एक एक का परिचय, एक एक को पूरा समय, कब से ज्ञान में आए, कितना समय हुआ, तो उसके बोलने से क्या क्या उसमें भरा हुआ है वो पता चल जाता है। तो ऐसे दादी भी आप सबसे एक एक से मिलती है, ये भी एक स्वागत का रूप है ना। नहीं तो कोई कहेगा हमारे से नहीं मिली, परंतु एक एक से, नाम से मिलती है। तो ये बच्चों की बाप के घर में स्वागत है। स्वागत किसकी होती है, हाँ? स्वागत किसकी होती है, मेहमानों की नहीं, मैं मेहमान के रीति से नहीं पूछती हूँ। हाँ? बड़े आदमी की स्वागत होती है। देखो हम प्रोग्राम में भी जब कोई बड़ा आदमी आते हैं तो उसकी स्वागत करते हैं ना। तो बाप बच्चों की स्वागत करते हैं, अर्थात बाप हम बच्चों को इतनी महान दृष्टि से देखते हैं। बाप जानते हैं कि मेरे बच्चे कितने महान हैं, और बच्चे क्या जानते हैं अपने को, हाँ? बच्चे ये जानते हैं ना कि हम कितने महान हैं, हाँ? है महान, कितने महान है, क्या महानता हमारी है, हाँ? तो जैसे बाप हम बच्चों को इतना महान समझते हैं, वैसे हम बच्चे अपने को कितना महान जानते हैं। क्योंकि महान आत्माओं की चलन, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, संबंध, संपर्क सब कैसा होता है। संपर्क भी ऐसे ही लोगों से होगा जैसे खुद महान होंगे, ऐसे होगा ना। संबंध भी ऐसे से होगा, संपर्क भी ऐसे लोगों से होगा, और उनकी अपनी चाल चलन बोल सब वो दिखाई पड़ेगा, उन सब से ये दिखाई पड़ेगा कि ये महान आत्माएं हैं। अब कर्म में महानता तभी आती है जब हम अंदर में स्वयं को इतना महान मानते हैं। ये तो सब ब्राह्मण कहेंगे कि हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, इसलिए हम ऊंचे हैं। बात तो ठीक है, ऊंचे ते ऊंचे बाप के नाते से हम ऊंचे हैं, लेकिन बाप के संबंध से हमारे में वो ऊंचाई क्या क्या है, कितनी है, कैसी है, इस बात को अगर हम अपने विचारों में लाएं, और जितनी जितनी हमारे विचारों में वो ऊंचाइयां इमर्ज होती जाएंगी, उतना उतना हमारी वृत्ति में ऊंचाई आएंगी, और जब हमारी वृत्ति इतनी ऊंच बनती है तब हमारी दृष्टि, बोल, चाल, चलन सब ऊंचे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने अभी हम बच्चों को ये वर्ष और उसमें भी ये स्मृति मास, स्मृति मास बाबा कहते हैं ये समर्थी का मास है। ऐसे तो संगम युग ही हमारे लिए समर्थी का युग है, शक्तिशाली युग है। हमें संगम युग ही हिम्मतवान बनाता है और इतनी हिम्मत देता है जो हम क्या से क्या बन जाते हैं। परंतु उसमें भी बाबा समय समय पर हम बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए अथवा हम अपने लक्ष्य को संपूर्ण रीति से प्राप्त कर ले इसलिए समय समय पर भिन्न भिन्न रीति से हमें ऊंच बनाते ही रहते हैं। ऊंच बनने के लिए भिन्न भिन्न विधि कहो अथवा युक्ति कहो देते ही रहते हैं। तो इस वर्ष में हमें ये तपस्या वर्ष बाबा ने दिया है और उसमें भी ये मास तपस्या का मास जिसको हम स्मृति मास कहते हैं, वैसे स्मृति दिवस कहते थे और अब ये स्मृति मास अर्थात स्मृति समर्थी मास है जिसके अंदर जो हमारा तपस्या वर्ष है उसकी पूरी रिजल्ट बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इसी मास के अंदर संपन्न करनी है। भले उसके बाद तीन मास हैं लेकिन वो तीन मास जब अभी अपनी समर्थी से इतना तो हम जानते हैं ना कि वर्ष के अंदर समझो आठ मास पूरे हुए, आठ मास के अंदर तपस्या वर्ष की रिजल्ट हर एक की अपने अपने पास है कि हमने जो तपस्या की। जैसे आज भी दादी ने पूछा ना, ऊपर भी पूछा, जो पार्टियां मिल रही थी 6 घंटा कौन योग करते कि कौन कर रहे हैं, 8 घंटा कौन करते हैं, 4 घंटा कौन करते हैं, चलो समय निकाल करके योग तो कर भी लेंगे लेकिन योग की स्टेज तपस्या माना, तपस्या शब्द किस बात को सिद्ध करता है। आप सबने बाबा की अभी की भी मुरलियां सुनी होंगी इस वर्ष की, जो अभी 2-3 4 मुरलियां चली है वो सब सुनी होंगी जिसके अंदर बाबा ने तपस्या में क्या क्या करना है, क्या क्या हमारे में परिवर्तन आवे, वो सारी स्पष्ट बताया है। याद क्या क्या बताया है याद सभी को? हाँ, या वो भी समा गया, पवित्रता की पर्सनालिटी और ऑनेस्टी और लॉयल्टी, अच्छा रियलिटी, पर्सनालिटी, रॉयल्टी, रियलिटी और ऑनेस्टी, ठीक है बातें याद हैं? हाँ, पूछो किसको याद है और क्या क्या याद है। मधुबन में आके जो हमारी आशा रहती है हर एक के पास अपने उन्नति के लिए, प्रगति के लिए अपने प्रति भी आशाएं होती है ना, ये तो हम जानते हैं बाप की हम बच्चों के प्रति क्या क्या आशाएं हैं और हमारी भी अपने प्रति वही आशाएं हैं कि हम बाप की आशाओं को पूर्ण करें, ठीक है ना बात। जब हमारी भी वो इच्छा है हम बाप की आशा को पूर्ण करें तो पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि इस सृष्टि मंच पर हर एक का पार्ट अपना अपना है, ऐसे है ना। जब हर एक का पार्ट अपना अपना है और हम सबको बाबा की आशा को पूर्ण करना है वो तो एक ही बात है, पार्ट हमारा अपना अपना है लेकिन बाबा की आश हम सब बच्चों के प्रति एक ही है और हमारी भी अपने प्रति यही इच्छा है। कौन सी? जो बाबा कहते हैं अर्थात हम संपूर्ण बने, ये है ना हमारी आश। संपूर्णता की क्या क्या निशानियां है ये भी हम लोग जानते हैं और उसके लिए संपूर्ण बने उसके लिए बाबा ने हमें अभी ये तपस्या वर्ष दिया है। योग तो हम सदा ही करते रहे लेकिन तपस्या के समय योग की विधि क्या है, तपस्या के वर्ष में अथवा तपस्या के संबंध से योग की स्टेज हमारी क्या रहनी चाहिए, उसमें हमारी विशेषता क्या चाहिए योग में। चलो हम 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, 3 घंटा बैठे, समय निकाल करके भी बैठे लेकिन उसके अंदर हमारी विशेषता क्या हो, क्या प्रयोग, योग ही क्या जिसका प्रयोग। वैसे तो योग की परिभाषा बड़ी सहज है, बाप को याद करो ये तो बड़ी सहज बात है, लेकिन योग की जो स्टेज बाबा बताते हैं, या योगी जीवन जिसको कहा जाता है, तपस्वी मूरत जिसको कहा जाता है, जिससे चेहरे से, जिसके नैनों से, जिसके बोल से ये हमें प्रतीत हो, केवल दिखाई न पड़े परंतु उसका असर हमारे पर आवे। जैसे कोई के अंदर भी समझो शांति, गहरी शांति होती है, तो उस समय उसके गहरी शांति का प्रवाह अपने पास आता है। जैसे देखो हम लोग सब संगठन में जब बैठ जाते हैं, बिल्कुल साइलेंस में होते हैं, तो वो शांति का प्रवाह जाता है। जब कोई भी अंदर आता है, चाहे यहां तक पहुंचे या न पहुंचे, परंतु बाहर के गेट से अंदर आने से ही उनको ये महसूस होता है कि यहां बड़ी शांति है, और उनको वो शांति एक अच्छी लगती है। एक शांति होती है जो वैराग दिलाती है, लेकिन एक शांति होती है जो प्रिय लगती है, पसंद आती है, प्यारी लगती है। तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ एक ऐसी शांति है जो दिल को अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। तो जिस समय हमारे में समझो वो प्रवाह, हम उसमें कंप्लीट हैं, तो वो प्रवाह जाता है। इसी प्रकार से जब हम योग में हैं, तो योग का प्रवाह, योग हमारा ऐसा पावरफुल हो, योग हमारा पावरफुल किस आधार से बन सकता है? क्योंकि हर बात में हमें जो ये रोज रोज बाबा आकर के सिखियाएं देते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं, ऐसे करो ऐसे करो, अब उन सब की धारणा हमारे में किस प्रकार से हो, और विशेष रूप से इस तपस्या मास के अंदर विशेष किन बातों का हमारा ध्यान रहे, जिससे ये जो बाबा कहते हैं प्यूरिटी की पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का आधार किस पर है, प्यूरिटी का आधार किस बात पर है, प्यूरिटी बाबा किसको कहते हैं, इस प्रकार जब हमारे ऐसे विचार चलते हैं, और वो विचार हमारे चलते ही रहे, भले हम सुनते भी जाते हैं, सुनते भी तो वही है जो उन बातों को स्पष्ट करता है, लेकिन मेरे संकल्प, मेरे विचार के अंदर वो बात कहाँ तक चलती है? क्योंकि मेरे पर असर, सुनने का असर तो पड़ेगा, परंतु मेरे कर्मों में परिवर्तन तब आएगा जब मेरे अंदर अपना चिंतन चलेगा। जिस बात का मेरे अंदर अधिक चिंतन रहेगा, उस बात का ही असर मेरे कर्मों में आएगा, बोल में, वाचा में भी, वाचा भी तो कर्म है ना, तो बोल में भी परिवर्तन उस बात का ही आएगा जिस बात का मेरे अंदर चिंतन है। बाबा की मुरलियां हम सुनते हैं, लेकिन सुन करके उसी बात को हम उस प्रकार से सोचे, चलते फिरते तो हम याद कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन रिवाइज के साथ साथ जो बात हमें समझ में आती है, इस बात की शक्ति हमें चाहिए, प्यूरिटी, मानो बाबा कहते हैं प्यूरिटी की पर्सनालिटी में बाबा ने ले आया, तो पर्सनालिटी बनती है जब हमारे संस्कार प्योर हो जाएंगे, संस्कारों में हमारे प्यूरिटी आ जाए, क्योंकि पर्सनालिटी का आधार किस पर है? संस्कारों पर। पर्सनालिटी कैसे बनती है? एक तो पर्सनालिटी जो लोग मानते हैं, भाई फलानी पर्सनालिटी है, किसको भी उनका गायन करते हैं, तो वो उनके कर्तव्य पर करते हैं, अगर वो सेवाएं उसकी इतनी जास्ती है, सोशल वर्कर है, बहुतों की सेवा करते हैं, बहुतों को संतुष्ट करते हैं, और बहुतों के संपर्क में आए हुए हैं, बहुतों को सुख देते हैं, तो उसके लिए भी कहते हैं ये नामी ग्रामी पर्सनालिटी है, ठीक है ना। और दूसरी पर्सनालिटी जो महानता के आधार पर है, जो हमारे कर्मों में ऊंचाई हो, हमारे विचारों में ऊंचाई हो, तो वो ऊंचाई के आधार पर हमारे कर्मों में विचारों में जो ऊंचाई आएंगी वो किस आधार पर, वो हमारे संस्कारों के आधार पर। भले हम कहेंगे हमारे में संस्कार तो पहले पुराने हैं, लेकिन ये भी बात हमें याद रहे कि बाबा हमें बार बार स्मृति दिलाता है। कौन सी स्मृति दिलाता है? हाँ, एक बोले कौन सी स्मृति दिलाता है कि तुम आदि में कौन है, अनादि स्वरूप तुम्हारा कौन सा है और आदि स्वरूप तुम्हारा कौन सा है। पर्सनालिटी के मुरली में आपको याद होगा कि बाबा ने हमारे प्यूरिटी की पर्सनालिटी और प्यूरिटी की रॉयल्टी, उसमें बाबा ने हमें इन बातों की स्मृति दिलाई है कि अनादि स्वरूप में तुम कौन है, आदि स्वरूप तुम्हारा क्या है और फिर पूज्य स्वरूप में तुम्हारी कैसे पूजा होती है। इतने रॉयल हो, इतने ऊंची आत्माएं हो, आदि में देखो तो हम देवताएं हैं, अनादि स्वरूप में देखो तो कौन हा? वो शुद्ध आत्माएं, परमात्मा की संतान हम शुद्ध आत्माएं हैं और उनके नजदीक वाली आत्माएं हैं। ऐसा है ना, हम जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो बाप की नजदीक वाली आत्माएं हैं, उनकी पहली रचना हम हैं। तो पहली रचना के संस्कार कौन से? आदि स्वरूप हम अपना देवता देखें तो देवताओं के संस्कार कौन से? और अगर पूज्य स्वरूप को याद करें तो पूज्य स्वरूप भी तो वही देवताओं का ही है ना, तो उनकी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है, कितने प्रकारों की पूजा होती है। अगर इन्हीं बातों को हम स्मृति में रखें, भले अनेक जन्मों के कारण हमारे संस्कार पुराने हैं, पुरानी दुनिया के हैं, शरीर भी हमारा पुराने तत्वों का बना हुआ है, लेकिन वर्तमान संगम युग पर, अभी संगम युग है ना, संगम युग हुआ सृष्टि की आदि या अंत, क्या कहेंगे? संगम युग सृष्टि की आद है या अंत है? ब्रह्मा बाप, प्रजापिता ब्रह्मा आदि मनुष्य है या अंत का मनुष्य है? क्या कहेंगे? आदि कहेंगे ना। रचयिता बाप है, प्रजापिता है। अब प्रजापिता ब्रह्मा की पहली रचना हम है, तो पहली रचना कितनी शक्तिशाली होती है, पहली रचना कितनी शुद्ध होती है। पहली रचना माना वो समान बाप के हैं। अगर हमारे विचारों के अंदर इस प्रकार के विचारों की लहर चलती रहे तो बताओ हमारी वृत्ति कैसी बन जाएंगी। वृत्ति के अंदर कोई विकार आ सकता है? वृत्ति के अंदर कोई अशुद्धता आ सकती है? तो हमारी वृत्ति जब प्योर बन जाती है, जिसके अंदर प्यूरिटी के सिवा और कोई भी प्रकार का अंश मात्र भी टच नहीं होता है, तो वो हमारी प्यूरिटी पर्सनालिटी का रूप ले लेती है। क्योंकि अंदर की शुद्धता, जब आत्मा शुद्ध है और उनके विचार वृत्ति शुद्ध है, वृत्ति शुद्ध है तो दृष्टि भी शुद्ध है, दृष्टि शुद्ध है तो सृष्टि भी शुद्ध है। अर्थात हम जो भी कर्म करेंगे, बोल चाल, जिसके भी संपर्क में आएंगे, चाहे वो कैसी भी व्यक्ति हो, परंतु हमारी वृत्ति शुद्ध होने के कारण दूसरे के प्रति भी हमारे अंदर शुभ भावना बनी रहेगी। तो हमारे अंदर तो शुद्धता रही ना, हमारे अंदर और किसकी भी अशुद्धता वो हमारे पर असर नहीं करेंगी, क्योंकि हमारी अंदर शुद्धता जो है वो सदा ही चलती रहती है। जैसे कहा जाता है ना, गंगा का पानी बहता रहता है तो भले उसमें कितना गंद डालते हैं फिर भी उसको शुद्ध माना जाता है ना, बहता ही रहता है। अगर गंद भी डालते हैं तो वो भी बह जाता है, वो रहता नहीं है जो पानी को गंदा करे। तो जब हमारे विचारों के अंदर ये शुद्धता चलती रहेंगी, कैसे हम शुद्ध हैं, हमारा आदि स्वरूप क्या है, अनादि स्वरूप क्या है, किस बाप के बच्चे हैं। भले कहने में शब्द वो ही आते हैं, लेकिन आप सोचो जब उन बातों को हम अंदर ही अंदर बैठ करके सोचते हैं तो उसका कितना नशा चढ़ता है, उस समय की मस्ती क्या होती है। वो मस्ती हमें एक अलौकिक जीवन में ले जाती है, हमारे अंदर वो एक अलौकिकता की लहर जागृत करती है। जो लहर हमारी जागृत रहे, लहर चलती रहे, हम उसको बंद न करें, समझो कामकाज में आ गए, वो अंदर की जो लहर है चिंतन की, वो हमारी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर वो लहर हमारी बंद हो जाती है और हम साधारण रीति से अपने पाठ में लग जाते हैं, तो वो हमारा कंटिन्यूएशन जो चले, जो योग का कनेक्शन चलता रहे, वो मानो उस समय रुक जाता है। जिस कारण फिर जब हम योग में बैठते हैं तो हमें फिर से अपने को स्मृति दिला करके बैठना पड़ता है, और उसमें जो जितना समय हमने ऐसे ही कहे ना वेस्ट किया, माना जितना समय हमारे अंदर वो शुद्ध चिंतन का प्रवाह नहीं रहा, तो उसके बदले में क्या होगा। भले कोई अशुद्ध बातें हमारे अंदर ना आई, लेकिन शुद्धता का प्रवाह तो नहीं रहा ना। तो जब प्रवाह नहीं रहा तो कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा ना, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर गंगा का पानी बहता न रहे जोर से तो कचरा ठहर जाएगा ना, ठहर जाएगा तो वो गंदा हो जाएगा ना। जहाँ ठहरा हुआ पानी होता है वो कैसा लगता है, दो तीन दिन के बाद गंदा ही लगता है ना। तो ठहरा हुआ न रहे अर्थात हमारे अंदर भी जो ये चिंतन की धारा है, शुद्ध चिंतन की धारा, वो हमारी बहती रहे। वैसे भी बाबा देखो कहते हैं ना, गंगा वो जो बहती रही। आज की मुरली में था या कल के मुरली में था कि तुम जाकर के लोगों को ये पैगाम दो, संदेश, तो उन्हों को कुछ ना कुछ दो अक्षर भी सुनाओ। तो गंगा वो जो बहती रहे, तो ये स्थूल में हुआ और ये हमारा सूक्ष्म में, वो भी हमारी गंगा, ज्ञान गंगा भी, ज्ञान भी हमारा तब निकलता रहेगा जब अंदर में हमारे वो धारा चलती रहेंगी। भले बाबा ने हम बच्चों को इतना ज्ञान दिया है, जो हमारे बुद्धि के अंदर इतना भर गया है, कोई भी हमारे सामने आएगा, कभी भी आएगा, तो हम वर्णन तो कर ही लेंगे, लेकिन जिस प्रकार हम बाहर वर्णन करते हैं, जरूरी समझते हैं, उस प्रकार हम अपने अंदर में ये जरूरी समझें कि हमारे अंदर वो धारा चलती ही रहे। अगर ये शुद्ध चिंतन की धारा हमारी चलती रहेगी तो कोई भी अशुद्ध हमारे पर असर नहीं होगा, टच नहीं करेगा, और वो टच ना होने के कारण हम आत्मा सदा स्वच्छ रहेंगी। जिस कारण हमारी वृत्ति, दृष्टि, बोल चाल चलन सदा शुद्ध नजर आएंगी, और वो शुद्धता हमारी बढ़ती जाएंगी। हमें बार बार अपन को शुद्ध बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, परंतु वो शुद्धता हमारी आगे बढ़ती जाएंगी, प्रगति के ओर हम जाते रहेंगे। नहीं तो क्या हो जाता है, जब वो धारा हमारी रुक जाती है, फिर जब हम योग में बैठते हैं तो हम कहते हैं ना, अधिकतर व्यर्थ संकल्प आते हैं। मैं समझती हूँ अभी भी ये कंप्लेन बंद नहीं है, तो ये क्यों आते हैं, क्योंकि जो कुछ हम कर्म करते हैं और जिनों के संपर्क में हम कर्म करते हैं, उनका थोड़ा बहुत असर हमारे मन पे पड़ जाता है, चाहे हम उस बात को लेवे या न लेवे। परंतु अगर हमारी चिंतन धारा बंद है तो असर पड़ता ही है, और उसका परिणाम है, ये प्रमाण है कि जब हम योग में बैठे, इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार ये कहते हैं, बच्चे ही अपन को चेक करो, योग में बैठो, एक सेकंड में बाबा की आवाज से पर सेकंड में परे हो जाओ। और इस बात को हम लोग रियल सल करके देखते हैं तो बरोबर एक सेकंड के अंदर कभी हो भी जाता है और कभी जब इधर उधर से घूम फिर के बातें चीते करके आओ तो होगा सेकंड में। परंतु अगर हमारी चिंतन धारा कुछ भी कर्म करते रहो, अगर हमारी वो शुद्ध चिंतन की धारा अंदर चलती रहती है तो अंदर आत्मा पर उसका असर पड़ता रहता है। और वो असर होने के कारण, क्योंकि वो धारा बहती रही है, तो फिर जब भी बैठो तो उस गंगा में नहाओ तो पावन हो जाएंगे ना, पावन ही बनते जाएंगे ना, अंदर से जैसे कि अपने को पावन बनाता ही जा रहा है। और इसी शुद्ध चिंतन के आधार से ही जो हमारे पुराने संस्कार हैं वो अपने आप परिवर्तन होता जाता है। क्योंकि पुराने संस्कार, ये हम योग में बैठते हैं, ये हम योग में बैठते हैं, चलो कभी तो व्यर्थ जो हम कर्म करते हैं उसका असर भी आता है। और कभी कभी कहते हैं ना, पता नहीं कहाँ कहाँ के ख्याल आ जाते हैं, कभी हम सोचते भी नहीं लेकिन कई पुरानी बातें याद आ जाती है। तो ये कई पुरानी बातें आती हैं, ये जो बीच बीच में हमें रुकावट डालती है, इसका कारण ही ये है कि हमारी जो शुद्ध चिंतन की धारा, ये ज्ञान हमें है कि हम आदि रूप में शुद्ध हैं, इस बात को हमने स्वीकार कर लिया है, परंतु उसको चिंतन करके 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 अपने को वो स्वरूप बना ले, उसमें कभी हम पूरा टाइम करते भी हैं और कभी हमारे से छूट जाता है। उसका ये प्रमाण है कि बरोबर हमारे से छूटता है, क्योंकि नहीं तो उसी स्वरूप में हमारी प्रगति होती जानी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे सदा अपनी उस पर्सनालिटी को याद रखो, प्यूरिटी की पर्सनालिटी। कितनी हमारी ऊंची पर्सनालिटी है जिसकी रॉयल्टी अभी तक भी गाई जा रही है, है तो हमारी ना, अभी हम साधारण रूप में हैं, अभी हमारे में वो पर्सनालिटी, वो रॉयल्टी नहीं है, परंतु बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि देखो बच्चे अपनी पर्सनालिटी को। और अगर वो हमारी स्मृति में रहे, सदा वो हमारी स्मृति बनी रहे, तो क्या वो फिर से हमारी पर्सनालिटी नहीं बन जाएंगी? पर्सनालिटी बनाने का आधार हमारे संस्कारों पर है, और संस्कार बनाने का आधार जितना जितना हम गहराई से उसको चिंतन करते हैं। वो पवित्रता क्या है? देवताएं तो पवित्र ही है ना, तो उनकी दिव्यता, उनकी पवित्रता क्या है और कैसी है? कर्मों से तो हम गाते हैं, नैन कमल, हस्त कमल, चरण कमल, एक एक कर्मेंद्री को कमल से भेंट करके गाते हैं, क्योंकि वो न्यारे हैं, प्यारे भी हैं और न्यारे भी हैं। तो जैसे हम उन्हों का गायन करते हैं, उसी पर हम अपनी विचारधारा को चलाना शुरू करें, कैसे, क्या उन्हों के अंदर वो विशेषता है, क्योंकि संगम पर हमें वो सब बातें धारण करनी है, वो पूरी शक्तियां संगम पर हमें लेनी है, जो फिर प्रत्यक्ष रूप में स्थूल स्वरूप हमारा जाकर के भविष्य बनता है। अभी हमारे आत्मा की शक्ति इस पुराने शरीर से आत्मा की शक्ति काम करेंगी, लेकिन आत्मा के अंदर हमें इतनी शक्ति भर देनी है, जिस शक्ति के आधार से हमारी कर्म इंद्रियां जो भी कर्म करें तो ऐसा लगे कि जैसे कि हम कमल के समान कर रहे हैं। जो कमल का गायन है, न्यारा भी है और प्यारा भी है, वर्णन हम करते हैं, समझ में हमको आता है, हम चाहते भी है, लेकिन स्वयं ऐसे बने, स्वयं के प्रति हम सोचे, जितना स्वयं के प्रति सोचेंगे उतना ही स्वयं परिवर्तन हो। परिवर्तन का आधार किस पर? नॉलेज से हमको समझ में आ गया, लेकिन इसलिए बाबा ने इतने वर्ष ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, हम चारों सब्जेक्ट पढ़ते आए, और अब बाबा ने जोर दिया है कि बच्चे तपस्या वर्ष के अंदर समय निकालो, क्योंकि तपस्या के लिए एक तो हमें एकांत की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं समय निकाल के योग में बैठो, इसका मतलब ही ये है कि जितना हम समय निकाल करके बैठेंगे, चलो 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, तो उसके अंदर एकांत रहेंगी ना, जिसके लिए बाबा ने हर मुरली के अंदर चेकिंग बताई है। और अंतिम रिजल्ट में मुख्य बात कौन सी कही है, रिजल्ट में क्या चाहिए, सर्व प्रकार की संतुष्टता। संतुष्टता देखो हमारे में कितनी परसेंटेज तक है, स्वयं से संतुष्ट, आज का भी वो स्लोगन था ना तपस्या वर्ष का, उसके अंदर भी ये संतुष्टता की बात थी। और बाबा ने अभी जो लेटेस्ट मुरली चलाई थी उसमें भी फाइनल चेकिंग, जिसमें आपको प्राइस मिलेंगी, यही संतुष्टता बताई है, सर्व प्रकार की संतुष्टता। एक तो स्वयं सर्व प्रकार से संतुष्ट, फिर सर्व मेरे से संतुष्ट, और बाप भी मेरे से संतुष्ट हो सेवा में, स्वयं के प्रति जो भी बातें हैं, स्वयं का पुरुषार्थ कहो, स्वयं के पुरुषार्थ की रफ्तार कहो, स्वयं के संस्कार कहो, स्वयं की सेवा कहो, इन सब बातों में हम स्वयं संतुष्ट रहें, तो ये तो हम लोग अपने से पूछेंगे। तो अभी तक हम कहेंगे ना अर्जुन काम है बाकी है, तो बाबा कहती है तपस्या वर्ष में बाकी को पूरा करो, बाकी कुछ न रहे और हम संपन्न बन जाएं। संपन्नता का हमें अनुभव हो, संपन्नता का वर्णन हम करते हैं क्योंकि ज्ञान से हम हर बात का स्पष्टीकरण बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो स्पष्टीकरण करते हैं उसको हम अपने विचारधारा के अंदर, ऐसा अपने अंदर वो विचारों के अंदर घुमा लें जो सारी विचारधारा वो संपन्नता की बन जाए, और वो घड़ी घड़ी हमारे चिंतन में चलती रहे चलती रहे चलती रहे, तो देखो हम संपन्नता का अनुभव करते हैं ना। पहले हमें वो समझ में आए, फिर उसका अनुभव हो, जब अनुभव हो तब फिर हमारे कर्मों में आए, अर्थात हमारे में वो परिवर्तन आए। अभी का गीत सुना, गीत ने क्या बोला, बाप समान तपस्या करके क्या करेंगे, बदलेंगे धरती और आकाश, कितनी बड़ी बात है। और ये हम लोग दाव लगाते हैं कि हम धरती और आकाश को परिवर्तन करेंगे, धरती आकाश को परिवर्तन करने के पहले पहले अपनी धरती परिवर्तन हो ना, ये भी तो धरती है ना, अपनी प्रकृति, 5 तत्वों की बनी हुई प्रकृति, इस प्रकृति को हम परिवर्तन करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये शरीर हमारा बदल जाएगा, लेकिन शरीर में रहने वाली आत्मा, उनके संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, उनकी विचारधारा परिवर्तन हो जाएंगी, उनकी संकल्प शक्ति, संकल्प परिवर्तन हो जाएगा, जो संकल्प शक्ति रूप बन जाएंगे। संकल्प को शक्ति रूप तभी माना जाता है जिस संकल्प के अंदर शुद्धता है, और शुद्ध संकल्प उठे और कर्म हो, उसको कहा जाएगा संकल्प शक्ति। माना संकल्प इतना शक्तिशाली है, संकल्प उठा और कर्म में आए। अब इतना हमारा संकल्प इतना शक्तिशाली हो, इतनी शुद्धता जब हमारे अंदर रहेगी, तो हमारा संकल्प ऐसा शक्तिशाली बनेगा। जैसे बाप का संकल्प, बाप को संकल्प उठा, एक ही संकल्प, पता है ना, हिस्ट्रियों में सुनते हैं ना, प्रत्यक्ष रूप है ना, बाप को संकल्प उठा नई सृष्टि रचे, और रच के दिखाई ना, ब्रह्मा को बना के दिखाया ना, बाप ने ब्रह्मा को बना के दिखाया ना, पैदा किया ना, जो साधारण था उसको अलौकिक बना दिया ना, और अलौकिक बना करके उनके द्वारा इतना कार्य करा के दिखाया, एक संकल्प ने इतना सारा कार्य कर दिया। और अब बाप कहते हैं बच्चे तुम बाप समान हो, तो बाबा के हिस्ट्री के अनुसार, बाबा के शुरू का पुरुषार्थ साकार बाबा का भी हिस्ट्रियों में तो सुनते हैं ना, कल भी और सुनेंगे, तो बाबा ने कैसे अपने से, नहीं तो हम तो कहते हैं बाबा को पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत। ब्रह्मा बाबा को वास्तव में अगर कहा जाए तो पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, और ऐसे कहें कि हम लोगों ने तो ऐसा ही देखा, हमें नहीं दिखाई पड़ा कि बाबा कोई पुरुषार्थ करता है। लेकिन बाबा अपना पुरुषार्थ बताते थे कि कैसे रात रात को जाकर के, या जब शुरू शुरू में जब प्रवेशता हुई है तो कैसे बाबा की जैसे कि नींद फिटी हुई रहती, जैसे जागती ज्योत है, और हर समय जो प्रवाह आता रहता था वो लिखते रहना, पढ़ते रहना, उस पर सोच करते रहना, एकांत में चक्कर लगाते रहे और उसी में मग्न रहे। जो प्रवाह बाबा के घर वालों को, जो भी घर वाले थे उन्हों को वो प्रवाह आता था कि बाबा क्या कर रहा है, एक बाबा है बिल्कुल न्यारा लग रहा है। तो भले ही आप लोग प्रवृत्ति में है, प्रवृत्ति को संभालना है, प्रवृत्ति को चलाना भी है, लेकिन ये सब करते अंदर की ऐसी धुन हमारी बने, वो हम देखें कि बरोबर तपस्या जिसको कही जाती है, हठ योगी तो जाकर के जंगल में बैठ जाते हैं और फिर भी उन बिचारों को पूरा लक्ष्य नहीं मिलता है। हमें तो लक्ष्य पूरा है, न सिर्फ लक्ष्य पूरा है परंतु लक्ष्य दाता हमें वो सारा सिखा रहा है, करा रहा है, वो हमारे सामने है, इसलिए हमारे लिए सहज भी है, और सहज होने के कारण हम प्रवृत्ति में रहते, ये सब कुछ करते भी हम अंदर से अपन को इतना न्यारा बना सकते हैं। लेकिन बनेंगे हम तब जब स्वयं पर हमारा इतना अटेंशन रहेगा। तपस्या माना हर समय अटेंशन भी दृढ़ता पूर्वक हो, हमारा योग ऐसे योग के प्रति ऐसा दृढ़ संकल्प हो, हमें ये बन करके ही रहना है। जैसे कहा जाता है तपस्या करते हैं, तप करते हैं, ये करना ही है। आशा हम अपने लिए रखते हैं, उमंग हमको है कि हाँ बाबा कहते हैं जो वो हम करेंगे, करके दिखाएंगे, ये उमंग हम लोगों को है। लेकिन जितना हमें उमंग है उसके साथ साथ हम उसमें करते चले और देखें अपने में कि बरोबर वो प्रगति हमारी होती जाती है। हाँ हमारी प्रगति भी कितनी रफ्तार से होती है, तेज रफ्तार की है या धीरे 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 चलती है। योग के समय अगर हमें सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? हाँ अलबेलापन और हाँ क्या क्या, तो इन सब का असर, प्रकृति का असर आत्मा पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्वयं आत्म अभिमानी नहीं है, देह अभिमानी है। देह अभिमानी होने के कारण प्रकृति की थकावट जल्दी होती है। जैसे पहले था ना भाई, खुशी में होते हैं तो क्या क्या होता है, तो खुशी में जल्दी नींद आएंगी, खुशी में कितना काम कर लेता है मनुष्य। चलो समझो कोई व्याधि भी ऐसी होती है, पर अगर अपनी आत्मा अंदर जागृत है, आत्मा शक्तिशाली है, आत्मा के अंदर ये लक्ष्य है अपना पक्का, तो फिर उसके ऊपर प्रकृति की जीत नहीं हो सकती है। थकावट प्रकृति की है, चलो शरीर थक जाता है। वैसे तो देखो मधुबन में तो कोई ऐसा काम नहीं करते हो जो थक जाओ, कोई भारी काम नहीं, कोई काम नहीं, केवल इतना है सवेरे उठते हो नियम से, घर में नियम से उठते हो या नहीं वो नहीं कह सकते हैं, कभी काम से थक करके आएंगे, रात को सो जाएंगे, सुबह को न भी उठेंगे क्योंकि वहां कोई चेक करने वाला नहीं है, इसलिए कभी कैसे, पर यहाँ नियम से कायदे से टाइम से उठना पड़ता है और टाइम पर बैठना पड़ता है, और वो थकावट फिर सारा टाइम चलती है सुबह से लेकर रात तक। जब भी क्लास में बैठेंगे तो देखो थके हुए कारण अंदर में वो जागृति नहीं है, लक्ष्य टाइट नहीं है। अंदर वो लक्ष्य हो, हमें कमाई करनी है, योग में हमें प्राप्ति होती है ना, बाप से मिलन होता है। बाबा ने तो क्या बताया हा? कितनी भाई ये मिलन भी गाओ नाचो, इसका मतलब ये नहीं कि हम उठ करके नाचें, अंदर हमारा मन नाचता रहे, बाप से मिलने की खुशी हो। तपस्या माना मौज मनाना, बाबा ने ये भी बताया था ना, तपस्या माना मौज मनाना, कहां तो तपस्या माना एकदम हम योग युक्त बने रहे और कहां तो तपस्या माना मौज मनाना, कितना फर्क है शब्दों में। लेकिन अंदर जितना हम बाप से योग लगाते हैं, जितना हम उसके प्यार में मग्न हो जाते हैं, उतना आत्मा को खुशी होती है, खुशी उसकी बढ़ती जाती है। क्यों? एक तो साधारण शब्दों में कहें कि जिसको याद करते थे भक्ति में इतने वर्ष, वो मिल गया तो वो खुशी कापारी चढ़ जाती है। शुरू में तो सबको खुशी का नशा चढ़ जाता है और नशे में झूमते रहते हैं, नींद नहीं आती है, परंतु थोड़े समय के बाद जब वो तृप्ति हो जाइए, हमें तो भगवान मिल गया, बस हम उसके बच्चे हो गए, फिर ये सब माया के भिन्न भिन्न रूप, इसको भी हम दूसरे शब्दों में तो माया ही कहेंगे ना। बात चल रही थी कि प्रकृति हमारे पर जीत न पाए, ये अगर हमें लक्ष्य है, शुरू में तो ये लक्ष्य रखते हैं, शुरू में देखो योग में कैसे अलर्ट होके बैठेंगे, बाप मिला है, भगवान मिल गया, बस खुशी का पारा चढ़ा ही जाएगा, थोड़े समय के बाद वो पारा थोड़ा ऊपर चढ़ के फिर नीचे आता है। वहां ही हमें अटेंशन रखना है, जब इतनी हमें खुशी मिली, इतना बाप का नशा चढ़ा, तो फिर क्यों हमारे में ऐसा, ये अपने पर अटेंशन हमारा ढीला हो जाता है अगर ये अटेंशन। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हर समय अपन को चेक करते रहो, जो चेकिंग ये रखते हैं ना पैरे पे, चेकिंग पर रखते हैं, वो कितने अलर्ट रहते हैं। चेकिंग वाले कभी ऐसे सुस्त हो सकते हैं? तो हम अगर अपनी चेकिंग रखते रहें तो हम सदा अलर्ट रहेंगे, और योग के समय हमारे पास लक्ष्य होना चाहिए ना, चाहे हम कमाई का लक्ष्य रखें, बाप से हमें प्राप्ति होती है, चाहे बाप से मिलन होता है तो वो भी खुशी है, चाहे बाप से प्राप्ति होती है, शक्तियों की प्राप्ति कहो, गुरुओं की प्राप्ति कहो, बाप समान बनने की प्राप्ति कहो, कोई भी बात को हम याद रखें और वो लक्ष्य रख करके अगर हम योग में बैठे तो हमें सुस्ती नहीं आ सकती, चाहे नवी नींद की हो ना, तो भी अगर हमें लक्ष्य है तो ऐसा नहीं है कि नींद हमको आ सकती है। लेकिन हम लोग जब बैठते हैं ना तो बस रिलैक्स ऐसे हो जाते हैं, जो आत्मा कहाँ गुम हो जाती है और प्रकृति उसके ऊपर जीत पा लेती है, ये भी खुद को पता नहीं पड़ता है। लेकिन सदा हम प्रकृति जीत हैं, हमें प्रकृति पर विजय पाके रहना है, प्रकृति हमारे पर विजय न प्राप्त करे, ये सदा हमारा अटेंशन हो तो हम इसमें सदा विजयी बन सकते हैं। बात है सारी हमारे अटेंशन की, अटेंशन हमारा थोड़ा भी ढीला है तो माया तो देखती, अनेक जन्मों के संस्कार है ना, प्रकृति ने अनेक जन्म हमारे पर राज किया है, तो उसको तो राज करने की आदत है, और हमें गुलाम बनने के संस्कार हमारे पर गए हैं, अब उसको एकदम परिवर्तन करना है कि हमें गुलाम नहीं रहना है, हमें उस पर विजयी बन के रहना है, उस पर हमें राज करना है। अभी राज लेने के लिए कितना करना पड़ता है, वैसे भी देखो स्थूल में भी राजाई लेने के लिए कितना करना पड़ता है, लड़ाइयाँ ये वो कितना सामना करना पड़ता है, कितनी बातें आती है और कितने बातों का सामना करना पड़ता है, वो तो स्थूल है। और ये हमारा अंदर की बात है, आत्मा को कम से कम पहले अपने पर राज करें तब तो विश्व के राजाधिकारी बने। तो प्रकृति हमारे पर विजयी न बने, ये सुस्ती दे अवमान की निशानी है, दे अवमान ही कहेंगे ना। और ये दे अवमान तो क्या, परंतु इसको माया कहें तो भी कह सकते हैं। माया माना पांच विकार, प्रकृति तो फिर भी अपन ही हो गई ना, पर पांच विकार तो और ही करीब आते हैं ना। तो ये सुस्ती भी विकारों में मानी जाती है। ये हमें ऐसे समय पर, खास करके जब हम बाप से मिलन मनाते हैं, बाप से मौज मनाते हैं, उस समय हमको ये विघ्न क्यों आना चाहिए। अगर हमारी अपने ऊपर ये कड़ी दृष्टि है तो हम उसमें विजयी बन सकते हैं। अगर हम इस बात को थोड़ा हल्का छोड़ देते हैं, चलो भाई बीमारी है तो ऐसे तो होगा ना, तो फिर जरूर राज करेंगी। और जितना समय उसका हमारे पर राज, एक तो अनेक जन्मों के संस्कार, अभी भी हम उसको राज करने देते हैं तो हम कहां राज अधिकारी बनेंगे, फिर तो हम विजयी बने बहुत दूर की बात है। और तपस्या वर्ष में ऐसी ऐसी बातें, इसको तो छोटी बात कही जाती है, वो फरिश्तेपन की स्टेज तो बहुत ऊंची है, उनके आगे तो ये बहुत छोटी बातें हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों पर भी हम थोड़ी थोड़ी विजय पाते जाएं तो हम फरिश्ता बन सकते हैं। अगर इन छोटी छोटी बातों को हमने छोटी बात समझ करके छोड़ दिया और उन छोटी बातों ने हमारे पर विजय पा ली तो फरिश्ता बनना तो बड़ी दूर की बात हो रही है। तो हम लोग दूर की बात तो सोचते हैं, हमें फरिश्ता बनना है, हमें बाप समान बनना है, हमें संपूर्ण बनना है, पर संपूर्ण बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन छोटी छोटी बातों को पार करते जाएं, ये तो पहले अटेंशन जरूरी है, इस बात का भी तो हमें ध्यान रखना होगा ना। तो अगर इन बातों पर ध्यान रखते, अर्थात प्रकृति जो कुछ करे उसके ऊपर हमारी नजर रहे कि उसकी मेरे पर विजय न हो, मैं उनसे जो कराऊं, मेरे नियम के अनुसार जो कुछ करना है वो मैं उनसे कराता जाऊं, जो मेरे नियम में नहीं है वो अगर प्रकृति करना चाहती है तो मुझे वो उस समय पता चल जाना चाहिए और उस बात पर हमारा कंट्रोल रहे। ये कंट्रोलिंग पावर भी हमारे में आएंगी तब जब हम आत्म अभिमानीपन का अभ्यास करेंगे। इसलिए भले कहा जाता है मैं आत्मा हूं, ये तो पहले दर्जे का लेसन है, पहला लेसन है, लेकिन पहला लेसन हमने कितना पक्का किया है, हमें आत्मभान बना रहे और सारे दिन में कितना समय हमको ये आत्मभान रहता है, ये अगर हम अपनी परसेंटेज निकालें तो अपन को पता चल जाएगा, तो प्रकृति का भान अधिक समय है या आत्मा भान अधिक समय। देखो थोड़ा समय भी हम आत्म अभिमानी स्टेज में रहते हैं, माना ये स्मृति रहती है मैं आत्मा हूं, थोड़ा समय भी तो भी अंदर हमें कितनी शक्ति महसूस होती है, क्योंकि जब हमें याद है मैं आत्मा हूं तो मुझे अपना बाप भी याद है, बाप याद है तो बाप की हर श्रीमत याद है, ऑटोमेटिक मैं बाप की श्रीमत के अनुसार ही कदम उठाती हूं। तो थोड़ा समय भी याद होने से आत्मा अंदर शक्तिशाली बनती है, उसमें हम जितना अधिक समय उस याद में रहेंगे आत्मा कितना शक्तिशाली बनेगी। इस बात का जितना हम अटेंशन रखेंगे, बात सारी आती है अटेंशन की, अटेंशन रखें और चेकिंग करते चलें तो चेकिंग में भी अलर्ट रहते हैं, अटेंशन भी अपन को अलर्ट रखता है। अगर हमारा अपने पर अटेंशन है और हम चेकिंग करते हैं तो भी हमारे में सुस्ती नहीं आ सकती है, और अगर हमारा हर समय अपने पर अटेंशन है तो भी हमारे में सुस्ती नहीं आ सकती। और अलर्ट हैं तो जरूर है हम कुछ ना कुछ लेते ही जाएंगे, कमाई करते जाएंगे, बाप से प्राप्ति करते जाएंगे, और जितनी प्राप्ति होती जाएंगी उतना हम शक्तिशाली बनते जाएंगे, आखिरीन उस स्टेज पर पहुंचेंगे जो हम स्वयं से भी संतुष्ट रहें और सर्व प्रकार से संतुष्ट हो। लेकिन संतुष्ट बनने के लिए पहले तो त्रिपद आत्मा बने। संतुष्टता तब तक नहीं हो सकती जब तक हम त्रिपद, हमारी मांग पूरी हो ना, हमारे अंदर प्राप्ति हो तो संतुष्ट हो ना। अगर प्राप्ति नहीं है तो संतुष्ट कहाँ हो? तो प्राप्ति त्रिपत आत्मा बने तो संतुष्ट रहे। अब त्रिपत कैसे बने? प्राप्ति होती ही जाए, हम माला माल बनते जाएं, इसको हम चिंतन करते रहें, और उस चिंतन के अंदर जो जो बात हमें आती जाए ऐसे करें ऐसे करें, क्योंकि ज्ञान तो बाबा ने दिया है, बाबा ने युक्तियां तो सब बता दी हैं। अब वो उसमें से जो युक्ति हमें उस समय आती है स्मृति में वो हम करते चले। इसको कहा जाएगा चिंतन से ही हम अपना स्वरूप बनते हैं, अथवा हम चाहते हैं कि हम बाबा की आशाएं पूर्ण करें, लेकिन करने के लिए जो हमें अटेंशन रखना है वो जितना हम रखते चलेंगे उतना ही हम बाप की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे, वरना हमारी आशा भी आशा ही रह जाएंगी, लेकिन हम ना अपनी आशा को पूर्ण कर सकेंगे ना बाप की आशा को पूर्ण कर सकेंगे। इसलिए तपस्या वर्ष के साथ साथ ये तपस्या मास, चलो 8 मास जितनी भी प्राप्ति, प्राप्ति तो हुई है, उमंग उत्साह है, ये भी प्राप्ति है, हम सदा उमंग में रहें ये भी एक प्राप्ति है, क्योंकि उमंग ही हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए उस उमंग के साथ साथ हम प्राप्ति करते चलें, ये हम अटेंशन रखें, और उस प्राप्ति के लिए हम अपनी विचारधारा को सदा बहती गंगा के समान शुद्ध संकल्पों के अंदर ही रमण करें, अथवा वो शुद्ध संकल्पों की एक धारा बना ले, गंगा के समान वो बहते ही जाए, धारा बन करके चलती रहे। जितनी वो हमारी धारा बहती रहेंगी उतनी हम आत्माएं पावन बनती जाएंगी, और पावन बनने से ही हमारे में शक्ति रहेंगी, अथवा बाबा ने जो कहा है बच्चे, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी, प्यूरिटी की रॉयल्टी, रियलिटी और ऑनेस्टी। ऑनेस्टी तो आज दादी ने बोला ना, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम बच्चों के लिए क्या बड़ी बात है, जब हम है ही बाप के बच्चे, उनके फरमान पे चलने वाले हैं, तो हमारे लिए बड़ी बात नहीं। लेकिन बड़ी बात तब तक है जब तक हमारा अटेंशन सदा नहीं है, अर्थात हम अगर अलर्ट रह करके सदा अटेंशन देते रहें तो कोई बड़ी बात नहीं, हम स्वयं की आशा भी पूर्ण कर सकेंगे और बाप की आशाओं को भी पूर्ण कर लेंगे। ओम शांति।